السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. القرآن حیاتی جز 3 لیکچر 4. اہلا وسہلا طالب علموں کے لیے خوش آمدید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کا ہم نے انتخاب کیا ہے. القرآن حیاتی، یعنی قرآن ہی میری زندگی ہے، یا قرآن میری زندگی میں کس طرح رہنمائی کرتا ہے، یا قرآن ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کیا تعلیمات دیتا ہے، اسی کو ہم لے رہے ہیں. ہم بہت زیادہ ان آیات کی طرف نہیں جا رہے ہیں جس میں غور و فکر، تدبر، تفکر یا علم کی بات ہو. ہم اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں. قرآن کی ہر آیت، ویسے ہم جانتے ہیں کہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے، اور قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ہر آیت بابرکت ہے، اس کا ہر میسج، ہر پیغام ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اور اس پر عمل کرنا سعادت کی بات ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے اصل میں جس کو ہم نے منتخب کیا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی لائف سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ انسان 24 گھنٹے جو گزارتا ہے اس میں، وہ 24 گھنٹے صرف علم کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے اپنے گھر والے ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، شوہر کے لیے بیوی ہے اور بیوی کے لیے شوہر ہے، والدین کے لیے اولاد ہے اور اولاد کے لیے والدین ہیں، بھائی بہن ہیں. روزانہ اسے لوگوں سے تعلق اور واسطہ پڑتا رہتا ہے، چاہے عام لوگ ہوں، خاص لوگ ہوں، محلے والے ہوں، رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں. تو اس میں ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کچھ ہماری باتیں، کچھ ہمارے معاملات، کچھ ہماری ڈیلنگز ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات کسی کو ہرٹ کر جاتی ہیں. تو اس آیت کی روشنی میں ہم وہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کتنا کانشیس رہ کر زندگی گزارنی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء تود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. جس دن پائے گا ہر نفس جو عمل کیا اس نے اچھائی سے اپنے سامنے حاضر کیا ہوا، اور جو عمل کیا اس نے برائی سے تو وہ بھی حاضر پائے گا. تو وہ آرزو کرے گا، کاش کہ ہوتی درمیان یا ہو درمیان اس کے اور اس کی برائی کے دور کا فاصلہ. اور ڈراتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شفقت کا ذکر ہے، اس کی رحمت کا ذکر ہے. ایک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا، اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی وہ دیکھے گا. وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا. اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان، شفقت کرنے والا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کس کے لیے آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کس لیے نازل فرمایا. یہ کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے درمیان موجود ہے، اور ایز اٹ از موجود ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تھا. ہم جانتے ہیں کہ پچھلے تمام کتابوں کی حفاظت ان کے علماء سے کروائی گئی تھی، یا ان کی امت سے کروائی گئی تھی، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے کہ ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں غور و فکر میں مبتلا کرتی ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اس کی حفاظت فرمائی، اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی چینجز نہیں ہے۔ پھر یہ کتاب آج جب ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از کیوں نہیں لیتے؟ یہ کتاب تو ہمیں اچھے اعمال، اچھے اخلاق کی ترغیب دیتی ہے، یہ کتاب تو ہمیں حسن اخلاق سکھاتی ہے، یہ کتاب ہمیں نرمی، صبر، برداشت، بہت ساری ایسی خوبصورت صفات ہیں جو یہ کتاب ہمیں عطا کرتی ہے، جو ہمیں اپنانے کی تاکید کرتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں جو دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو ہم تو کئی کئی قرآن تلاوت کے ختم کر لیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اخلاق میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجز نہیں آتے؟ کیونکہ ہم نے اس کتاب کو صرف برکت والی کتاب سمجھ لیا ہے، اس کو طاقوں میں سجا کر تو رکھ لیتے ہیں، اس کو ہاتھوں میں اٹھا تو لیتے ہیں، اس کو ریشمی جزدانوں میں تو لپیٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی آیات پر ہم عمل کرنا نہیں جانتے، اس کی آیت پر ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ کتاب کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ہم اس کتاب پر عمل کریں، اس کی ہر آیت کو اپنے دل پر لیں، اور اسی لیے واقعی میں جب تک ہم اس کی آیت کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو اپنے دل پر نہیں لیں گے، ہم اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پڑھنے والا تو کیسا ہوتا ہے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ کہ قرآن تو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ، لیکن ایکچولی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہونا چاہیے اس نے، تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا تھا، کیا چیز تھی، کیا چیز آئی تھی، کیا چیز نازل ہو رہی تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام بالکل بدل گئے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو بات بات پر لڑائی، فساد اور قتال کرنے والے لوگ تھے، سال ہر سال ان کے درمیان جنگیں چلتی تھیں، جاہلی عصبیت اور حمیت ان کے اندر بھری ہوئی تھی، لیکن سبحان اللہ اس قرآن نے کیسے ان کے تمام اعمال کو بدل دیا، سوچ کو بدل دیا، سوچ کے دھارے کو بدل دیا، زندگی کے رخ کو موڑ دیا ایک نیکی کی طرف، اور ایسے وہ بن گئے کہ ان کے جیسے کوئی اور نیک لوگ نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر اتنا بڑا علاقہ فتح ہو گیا تھا، ان کے زمانے میں کانکرڈ ہوا تھا، اور وہ اتنے بڑے علاقے کے امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، لیکن جب ان سے کسی نے کہا کہ اللہ سے ڈریے، اتق اللہ، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر ٹیک دیا، اور بار بار وہ یہی کرتے تھے، اتنا روتے رہتے تھے کہ کیا ہوگا عمر کا اگر وہ بخشا نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ ایک بڑھیا ان کو راستے میں روک کر کہنے لگی کہ اے عمر، رکو اور میری بات سنو، میں تمہیں اس وقت سے جانتی ہوں جب تم عمیر تھے۔ عمیر چھوٹے بچے کو بھی کہا جاتا ہے، تو ایکچولی وہ بھی بتانا چاہتی تھی بڑھیا کہ جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، یعنی تم امیر المومنین نہیں تھے، بس ایک نارمل پرسن تھے۔ تو جو عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یعنی یہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے، اور وہ اس بڑھیا کو روکنے لگی کہ تم کیا بات کر رہی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا کہ ان خاتون کو جو بات کہنا ہے کہنے دو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ تو وہ خاتون ہے جس کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنی تھی، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کی بات نہ سنیں؟ سبحان اللہ، کیسے عاجزی تھی ان لوگوں میں، کیسے نرمی تھی صحابہ کرام میں، آج وہ اخلاق کہاں ہیں؟ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دراصل دو بار، ایک تو یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور ہر شخص اس وقت وہاں وہ موجود پائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا، چاہے خیر کا کام کیا ہوگا، چاہے برائی کا کام کیا ہوگا۔ تو پہلے محدرہ کا لفظ ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے، یہ کہہ کر ڈرایا گیا کہ ہر چیز تم حاضر پاؤ گے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنے نفس سے، اپنی ذات سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ और क्यों डरा रहा है? ताकि हम उसकी नाफरमानी से बच जाएं, ताकि हम उसकी नाराज़गी मोल न लें, वरना वो तुम्हें उसकी सज़ा भी दे सकता है। और क्यों हमें करना है? क्योंकि हम सबको अल्लाह ताला की तरफ ही लौट कर जाना है, लिहाजा हमको उसे डरते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि क़यामत के दिन सारे बंदे अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होंगे, फिर वो तुम्हारे आमाल को शुमार करेगा और तुम्हारे तमाम आमाल तुम्हारे सामने रख दिए जाएंगे, फिर उन तमाम आमाल का मुहासबा होगा और उसी के मुताबिक तुम्हारी जजा और सज़ा होगी। लिहाजा ऐसे बुरे कामों से बचो जिनकी वजह से तुमको आखिरत में सज़ा मिल सकती है। अब ये तो एक आम पर्सन, आम बंदा भी पहचान सकता है कि वो कौन से बुरे काम हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है और वो कौन से अच्छे काम हैं जो अल्लाह ताला को पसंदीदा हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला अपना तकवा इख्तियार करने की ताकीद फरमा रहे हैं। और तकवा क्या है? कि अल्लाह की मोहब्बत में हर वो बुरा काम छोड़ देना जो अल्लाह ताला को नाराज़ करता हो, और अल्लाह ताला की मोहब्बत में हर वो काम कर गुजरना जो अल्लाह ताला को राज़ी करता हो। ये तकवा है असल में। तो ऐसे अमल करो जिनसे तुम्हें अजर सवाब मिले आखिरत में। और अल्लाह ताला ने अपने वसत इल्म की यहाँ बात की है कि वो ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों का इल्म रखता है, यानी जो कुछ दिलों में है वो भी वो जानता है, उसकी कुदरत कामिल है। और इसमें इशारा है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने दिलों को भी बुरे ख्यालात से पाक रखे, दिलों को भी गुनाहों की गंदगी और आलूदगी से महफूज रखे, क्योंकि ये जो बुरे ख्यालात होते हैं इंसान के, ये जो उसके दिल के ख्यालात होते हैं, वही उसका अमल बन जाते हैं, ये अमल में ढल जाते हैं। तो अगर जहन और दिल और दिमाग में अगर अच्छे ख्यालात रहेंगे, खैर ख्वाही का जज्बा रहेगा, दूसरों के ताल्लुक से अच्छाई रहेगी, तो ख़ुद ब खुद नेक अमल बनते चले जाएंगे, वही अमल अंजाम देता चला जाएगा इंसान। लेकिन अगर उसकी दिल, उसका दिमाग, उसकी सोच बुरी बातों को सोचता रहे, तो फिर वही उसका अमल बनता चला जाएगा। तो यहाँ पर इस आयत में दरअसल इंसान को ताकीद की गई है कि वो अपने अखलाक को दुरुस्त करे, उसका अखलाक बेहतरीन हो। आप जानते होंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया मुलाकात के लिए। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर हुजरे में थी, रसूल अकरम ने कहा कि मैं अभी आया उस शख्स से मिलकर, और ये शख्स अपने कबीले का सबसे बद अखलाक शख्स है, ये झगड़ालू शख्स है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए हुजरे से, और जब उससे बात करने लगे और बात करके वापस तशरीफ़ लाए, तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हैरान होकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो कहा था कि ये अपने कबीले का बदतरीन शख्स है, लेकिन आप तो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था, कि आपने फरमाया, ए आयशा, तुमने मेरा अखलाक कब बुरा पाया? सुभान अल्लाह, यानी एक बदतमीज़ शख्स है सामने वाला, एक ऐसा शख्स है जिससे अपने कबीले के सारे लोग उसके बारे में जानते हों, मशहूर हो वो शख्स उसकी अपनी बद अखलाकी के बारे में, लेकिन उसके साथ भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया और डीलिंग देखिए। और हो सकता है आपने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इसलिए ये बात कहकर गई हो कि ताकि वो शख्स आइंदा कभी इन लोगों से कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो ये तमाम तालीमात हमें क्या सिखा रही हैं, हमें क्या सीखना चाहिए? मुझे और आपको, हम क़ुरान पढ़ने वाले लोग हैं, अगर हम क़ुरान पढ़ते हैं तो उसका लाजमी असर हमारे अंदर नज़र आना चाहिए, हमारे अखलाक में तब्दीली आना चाहिए। क्योंकि सहाबा ने क़ुरान जब पढ़ा तो उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनका अखलाक ही बदल गया, वो लोग रहे ही नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट लोग हो गए थे, वो पहचाने नहीं जाते थे। यानी इतने बहादुर, इतने बात पर तलवार निकालने लेने वाले लोग दरगुजर करने वाले बन गए, नरमी उनकी आदत सानिया बन गई। ये वो लोग थे कि जिनसे दरियाओं के दिल दहल जाते थे, ये वो लोग थे जो क्या कुछ नहीं थे, जिन्होंने पहाड़ों को और सहरा को सर कर लिया था, किसी के आगे न दबते थे न झुकते थे, चाहे जान चली जाए लेकिन झुकना गवारा नहीं करते थे। लेकिन ये वो लोग थे कि जब क़ुरान इनके दिलों पर असरअंदाज होने लगा, जब क़ुरान की रहमत की बारिश इनके दिलों पर फुहार की तरह बरसने लगी, इनके दिल ऐसे नरम हो गए कि सख्ती बिल्कुल गायब हो गई। सुभान अल्लाह, क़ुरान तो ऐसे बदल देता है। क़ुरान हमें वो अखलाक सिखाता है जो इंसान को नरम बना देते हैं, उसके अंदर नरमी पैदा कर देते हैं, आजिज़ी पैदा कर देते हैं। क़ुरान पढ़ने वाला इंसान पहले जैसा इंसान नहीं रहता, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे कितने रमज़ान हमारे गुजरे हैं कि जिसमें हमने क़ुरान, कितने कुरान पढ़े होंगे, कितने कुरान की तिलावत हमने ख़त्म की होगी, लेकिन क्या हमारा अखलाक बदला उस रमज़ान के बाद? क्या हमारे अखलाक में तब्दीली आई? क्या हमारे लहजे में नरमी आई? تو یہ قرآن تو ہمیں حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، یا قرآن ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعریف ہی اس بات پر کی گئی تھی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. تو کیا چیز مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیا چیز محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ وہ میرے کون سے اعمال ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ بن جاؤں یا پسندیدہ بن سکتی ہوں؟ کبھی میں نے غور کیا؟ کبھی میں نے سوچا اس بارے میں؟ ہم تو اتنا بے دھڑک بے جھجک جو دل میں آیا کہہ دیتے ہیں سامنے والے کو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کہتے کہ ہاں ہم ایسی منہ پھٹ ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ جو حسن اخلاق ہوتا ہے وہ انسان کو اتنا ہر دل عزیز اور پسندیدہ بنا دیتا ہے. پھر اس کے ان لوگ اس کی ظاہری پرسنالٹی پر نہیں جاتے ہیں کہ اس کا حال حلیہ کیسا ہے. اگر اس کے اندر نرمی ہوگی تو لوگ اس سے قریب ہوں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے. عطاء بن رباح رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں دور دراز کے رہنے والے تھے، حبشہ کی سائٹ کے. بہت ہی ان کا رنگ بلیک تھا، ہائٹ بہت کم تھی، اور جیسے عام لوگ سمجھتے ہیں تو ناک بھی ان کی جیسے کہتے ہیں جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہے. کوئی ہماری نظر میں ہو سکتا ہے کوئی ناک کھڑی ہو اور کوئی چپٹی ہو، یہ ہمارا نقطۂ نظر ہے نا. ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی نظر میں ویسی ناک خوبصورت ہو. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر بظاہر دکھنے میں کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن ہزارہ لوگ مکہ کے امام تھے یہ، اور مکہ کے عالم اور فقیہ تھے، بڑے بڑے علماء. ایون اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ بھی ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر ان سے سنا کرتے تھے حدیث. تو آپ دیکھیں کہ بظاہر جو چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ آپ کو خوبصورت نہیں بناتی، لوگوں کے دلوں میں ہر دل عزیز نہیں بناتی ہے، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کی تعلیم، آپ کا علم آپ کو عزت عطا کرتا ہے. اچھے اخلاق والے تو ساری نیکیاں لوٹ لے گئے. سبحان اللہ، اچھے اخلاق والے ہر قسم کی بھلائی حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے تو کہا گیا نا کہ وہ حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل. اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل. واقعی میں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں نا، ان سے بار بار ملنے کو بھی دل چاہتا ہے، ان سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے. مسکراتے چہرے والے لوگ، دل کو موہ لینے والی باتیں کرنے والے لوگ، جن کے دل اور زبان ایک جیسی ہوتی ہے، جو منافقت نہیں رکھتے اپنے اندر. آپ کا دل ان سے ملنے کو چاہتا ہے، ان سے بات کرنے کو چاہتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کے دل پر بھاری لگتا ہے کسی سے ملنا، یعنی ملنا تو ہے لیکن آپ کے دل کے اندر وہ خوشی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے اخلاق کی وجہ سے. بعض وقت کسی کا میسج دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے اخلاق کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. تم سوچو تو صحیح، تم کل اپنے تمام اعمال کو حاضر پاؤ گے اپنے سامنے. ما عملت من خیر محدرہ، جو بھی تم نے خیر کی ہوگی وہ خیر تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، پلیٹ میں رکھ کر سجا دیا جائے گا تمہارے اعمال تمہارے سامنے. تو وہ خیر کیا ہے آخر کار؟ کس بات کو خیر کہا گیا ہے؟ میں اور آپ ہم خود سے تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے خیر، یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی ہمیں بتاتے ہیں، اور اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتائی جاتی ہے کہ خیر ہے کیا. تو اس آیت میں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو موجود پائے گا. اور سب سے پہلے خیر کی بات کی گئی ہے، اور سوء یعنی برائی کی بات اس کی بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کسی بھی کام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے ہمیں رک جانا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور ہر وہ کام ہمیں انجام دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو. ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات آتے ہیں جن میں سے ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. بعض اوقات ہمارا جملہ، بعض اوقات ہمارے چہرے کے ایکسپریشن، اور قرآن میں اس کی بات کی گئی ایکسپریشن کی کہ اس نے پیشانی سکیڑی اور منہ موڑا اور تکبر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے چہرے کے ایکسپریشن کا بار بار ذکر کیا کہ جتنے بھی جو تکبر کرنے والے اس وقت کے سرداران قریشی سرداران مکہ تھے، ان کا ذکر قرآن میں سورہ قلم میں ہے، سورہ مدثر میں ہے، سورہ علق میں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی پیشانی کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ. پھر تو جب انسان کے دل میں تکبر سماتا ہے یا اس کے ذہن میں خناس بھرا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہوتا ہے، تیوریاں چڑھ جاتی ہیں اس کی، ماتھے پر بل آ جاتے ہیں اور اس کے لہجے میں ایک کڑواہٹ سی گھل جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لہجہ ہی دلوں سے اتارتا ہے اور لہجہ ہی دلوں میں اترتا ہے۔ واقعی میں کہ لہجہ بعض وقت آپ کو دل سے نکال دیتا ہے لوگوں کے، اور یہ لہجہ ہی آپ کو لوگوں کے دلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھیں، تلوار کے زور سے ہو سکتا ہے سروں کو تو جھکایا جا سکے لیکن دلوں کو نہیں تسخیر کیا جا سکتا، لیکن زبان کے زور سے یا زبان کی وجہ سے دلوں کو تسخیر کیا جاتا ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ واقعی میں صحیح بات ہے کہ دلوں کو فتح کرنا زیادہ مشکل کام ہے اور زیادہ بڑا کام ہے۔ بیک وقت اتنے لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا دل اور زبان سب کچھ صاف ہو لوگوں کے لیے، آپ کے دل میں بھی کوئی برائی نہ ہو، ان کے لیے خیر خواہی ہو اور آپ کی زبان بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہو، آپ کا اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا رویہ، آپ کے چہرے کے تاثرات، یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں ہی ہمارے آس پاس ہی لوگ ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم تو انسان ہیں نا اور ایک فیملی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں میں چلے جاتے ہیں، نہیں، ہم کو اسی زندگی میں رہ کر لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے اپنے درجات کو بلند کرنا ہے اور خیر کے کام کرنا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی چھوٹی سی بات کسی کے دل پر اس طرح سے پیوست ہو جاتی ہے، جا کر سیدھا لگتی ہے کہ اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، زخمی کر دیتے ہیں ہم بعض اوقات لوگوں کے دلوں کو۔ اور اس زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی ہیں جو انسان کے درجات کو بلند کریں گے اور اسے جنت میں پہنچائے گی، اور انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہی ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گی۔ تو ہمارا لہجہ، ہمارا رویہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ہم کیا خیر جمع کر رہے ہیں، ہماری زبان سے خیر نکل رہا ہے یا شر نکل رہا ہے، ہم اپنے لیے آگے خیر بھیج رہے ہیں یا شر بھیج رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ تمام اعمال ہمارے سامنے وہیں پیش کر دیے جائیں گے۔ تو خیر کیا ہے اصل میں؟ عربی کی ڈکشنری کے مطابق جو مفردات القرآن ہے، خیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو، سب کو پسند ہو، مثلاً عقل، عدل اور فضل ان تمام اعتبار سے، اور ہر مفید چیز بھی خیر ہے، اور یہ شر کی ضد ہے۔ یعنی جب تک ہم دیکھیں اشیاء کو ان کے ضد سے پہچانا جاتا ہے تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ شر ہے۔ پھر ایک اور انہوں نے مزید معنی بتائے کہ خیر وہ ہے جو ہر حال میں ہر کسی کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسری خیر کی قسم وہ ہے جو ایک کے حق میں خیر ہو اور دوسرے کے حق میں شر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مال و دولت ہے، اگر یہ کسی سخی کے پاس جاتی ہے مال و دولت تو وہ اس کے لیے خیر ثابت ہوگا مال، اور کسی برے انسان کے پاس جاتا ہے مال تو وہ اس کے لیے شر ثابت ہوگا، کیونکہ نیک انسان کیا کرے گا، اس مال کو خیر کے کاموں میں لگائے گا، اس سے نیکیاں کرے گا، انفاق کرے گا، فضول خرچی نہیں کرے گا، اچھے کاموں میں خرچ کرے گا، اور جو برا انسان ہے وہ کیا کرے گا، ظاہر سی بات ہے شیطان کو خوش کرنے والے کام کرے گا، فضول خرچیاں کرے گا، گناہوں میں وہ پیسہ اڑائے گا۔ تو یہ مال ہے تو خیر، لیکن کسی ایک کے لیے خیر ہو سکتا ہے اور کسی ایک کے لیے شر ہو سکتا ہے۔ تو خیر بہت اس کے وسیع معنی ہیں، اور یہ لفظ قرآن کریم میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ خیرات کا لفظ، ہمارے یہاں خیرات کا لفظ بہت برے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خیرات کہتے ہیں وہ جو دروازے پر فقیر آتا ہے، سائل آتا ہے نا مانگنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں کہ خیرات دے دو، یعنی بہت ہی بیکار ردی چیز کو ہم خیرات سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خیر کا لفظ اپنے اندر خیر کثیر رکھتا ہے اصل میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو اپنا احتساب کرنے کی دعوت دی ہے کہ جب تک ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، اگر ہم اپنی غلطی پر اڑے رہیں اور اپنی بات کو ہی سچ سمجھتے رہیں تو ہم کو تو اپنے آپ میں برائیاں نظر ہی نہیں آئیں گی۔ بات تو اس وقت ہے جب ہم اپنی برائیوں پر نظر رکھیں، باریک باریک برائیوں کو ڈھونڈیں، کونے کھدروں سے نکالیں کہ کہاں کہاں ہمارے اندر ابھی خرابیاں چھپی ہوئی ہیں، کہاں کہاں دراڑیں ہیں، کہاں کہاں کچھ کمی اور کجی پائی جاتی ہے ہمارے اندر۔ تو جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہم تو اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتے رہیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، اور واقعی میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھی ہوں، باقی سارے کے سارے خراب ہیں، वो फलां तो ऐसा है, फलां तो ऐसा है, फलां तो ऐसा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये क्या हुआ, आप अपने आप को ख़ुद तमगा दे रहे हैं। तो ये तो कोई तमगा नहीं हुआ अपने आप को अच्छा साबित करने का, जब तक अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से आपको सनद ना फराहम की जाए। और ये कल क़यामत के दिन ही होगा जब आमाल हाजिर किए जाएंगे हमारे सामने, सामने ही पेश कर दिए जाएंगे। तो हमको अपना एहतसाब, अपना मुहासबा करना होगा कि कहाँ मेरे अंदर कोई खामी है, गलती है, कहाँ मेरी ज़ुबान ज़्यादा चलती है, कहाँ मैं दूसरों को हर्ट करने का बायस बनती हूँ। न थी हाल की हमें जब अपने ख़बर, रह देखते लोगों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नज़र तो जहाँ में कोई बुरा ना रहा। वाकई में अगर हम अपने क़रेबान में झांक कर देख लें कि खुद मेरे अंदर ही कितनी कमियाँ हैं, मेरे अंदर ही कितनी कोताहियाँ हैं, मेरे अंदर कितनी खामियाँ हैं, तो इंसान को दूसरों में कभी कोई खामी और कोई ऐब नज़र ना आए। लेकिन हम अपनी खामियों को देखते ही नहीं, हमको बस दूसरों के ऐब नज़र आते हैं, अपने नहीं नज़र आते। तो यहाँ पर हमको एहसास दिलाया गया कि हम अपनी ग़लती का एहसास करें, अपनी ग़लती को माने, तस्लीम करें और अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो जो भी खैर का अमल होगा वह कल क़यामत के दिन हाज़िर किया जाएगा। क़यामत के दिन सब बंदे अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे और उनको उनके आमाल पेश कर दिए जाएंगे। आप सोचें कैसा वह दिन होगा, सब लोग खड़े होंगे। और जब आमाल नामा तोला जाएगा तो अच्छे अखलाक का वज़न सबसे ज़्यादा भारी होगा। सुभान अल्लाह, उस वक्त अल्लाह ताला सारे आमाल को शुमार करेंगे। जो सही अहादीस है जिससे हमें पता चलता है कि हुस्न अखलाक में सबसे ज़्यादा वज़न, पढ़ने में सबसे ज़्यादा वज़न कल क़यामत के दिन हुस्न अखलाक का होगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आते हैं कि आप अखलाक में सबसे अच्छे थे। यानी तमाम सहाबा का अखलाक तो था ही था अच्छा, लेकिन आप सबसे बेस्ट थे। और आपने फरमाया कि सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो लोग हैं जो मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले हैं। सुभान अल्लाह, अभी दाऊद की हदीस है। तो मीज़ान में यानी ये जो हुस्न सीरत है दरअसल वो आपको इतना खूबसूरत बना देती है कि आप लोगों के लिए हर दिल अज़ीज़ बन जाते हैं, लोग आपसे फिर मोहब्बत करने लगते हैं। और ये किस वजह से होता है, अखलाक की वजह से। तो आप देखें, खलक़ पैदाइश को कहते हैं अदम से वजूद में लाना, जो अल्लाह ताला ने हमको किया। और खुलक़ ये आदात, खसलत, तबीयत के नाम है। तो खुलक इंसान ख़ुद अपने ऊपर कंट्रोल करके उसको मेंटेन कर सकता है, उसको बेहतर बना सकता है। लेकिन जो खलक है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से पैदाइश है। अब अल्लाह ताला ने मुझे जैसा भी पैदा किया उसमें मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में पैदा किया, जैसा मुझे बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाया, उस पर मुझे शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन जो खुलक है इंसान का, मिजाज, उसकी आदात, जो उसका खासा बन जाती है असल में, तो किरदार और शख्सियत ऐसी हो कि लोग खींचते चले आए हमारी तरफ। और ये जो खुलक है दरअसल ये अंदर की एक मुस्तकिल आदत का नाम है। यानी हमारे आमाल और जो अंदर की कैफियत है हमारी, उसी का नाम है असल में। जैसे हर चीज़ अल्लाह ताला ने डिफरेंट अंदाज से पैदा की, हम सब जानते हैं। मुख्तलिफ़ अलवानुहा का जिक्र आता है कि हर मुख्तलिफ किस्म के रंग पैदा किए अल्लाह ताला ने। पहाड़ों को मुख्तलिफ रंगों से बनाया, हर चीज़ को मुख्तलिफ रंगों से बनाया। और ये कितनी खूबसूरती है दुनिया में आज हम देखते हैं। इन्हें कुदरत, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं असल में। तो दुनिया में इतनी खूबसूरती है तो आप सोचिए कि जन्नत में क्या कुछ नहीं होगा। तो दरख्त जब तक हरे भरे ना हो हमें खूबसूरत नहीं दिखाई देंगे। सूखे हुए दरख्त किसी को पसंद नहीं आते। खेत जब तक लहलहाता रहता है, फसलें उसमें उगती रहती हैं, वो खेत खलियान कितने खूबसूरत और भले मालूम होते हैं। जब बारिश की फुहार पड़ती है तो खेतियाँ लहलहाने लगती हैं और वो मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। जब आप किसी पहाड़ी मुकाम पर चले जाएं, वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही हो और झरने बह रहे हों, तो उसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है। इसी तरह से फूल, किसी ऐसे इलाके में आप चले जाते हैं जहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल, सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो, तो उसकी खूबसूरती बिल्कुल डिफरेंट होगी। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने हर चीज़ में खूबसूरती रखी है। जो भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जो चीज़ पैदा की उसमें खूबसूरती है। तो इंसान की खूबसूरती किस में है, इंसान की खूबसूरती उसका आला तरीन दर्जा खूबसूरती का उसका अच्छा अखलाक है, उसके अपने अखलाक में है। और ये जो अच्छा अखलाक वाला इंसान है वो सबका महबूब बनता चला जाता है। इंसानों का भी महबूब होता है, अपने रब की नज़र में भी वो बहुत पसंदीदा बन जाता है। और वो अपने अंदरूनी यानी कैफियत जो होती हैं उसकी, उसमें वो अल्लाह ताला से डरता रहता है असल में। जब अंदर हम अल्लाह ताला से डरते रहेंगे हमारे दिल में, तो उसका असर बैरूनी आदात पर होगा, हमारी जो ज़ाहरी हालात हैं, ज़ाहरी आदात हैं। तो अच्छे अच्छे बंदों की सिफ़ात ही ये होती हैं कि उनके अंदर अच्छा अखलाक होता है, नरमी होती है जो उनको खूबसूरत बना देती है। और इसीलिए हदीस में आता है कि अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मीज़ान में हुस्न अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ न रखी जाएगी, और यकीनन हुस्न अखलाक वाला शख्स रोज़ेदार और नमाज़ पढ़ने वाले का दर्जा पा लेता है। सुभानअल्लाह, आप सोचें। तो इसीलिए तो कल क़यामत के दिन इतना पड़ला भारी होगा अच्छे अखलाक वालों का। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाएँ। और एक और हदीस जो हमें बहुत डराती है और हमें अपने अखलाक पर नज़र रखने की तरगीब दिलाती है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मुनाफिक में दो खसलतें जमा नहीं हो सकती, एक तो अच्छी चाल चलन और दीन की समझ। अब आप सोच लें कि जिन लोगों का अच्छा अखलाक नहीं होता, इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कैटेगरीज हैं मुनाफिकिन की, लिहाजा हमको अपने अखलाक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो जब आमाल नामा तोला जाएगा तो सबसे ज़्यादा वज़न हुस्न अखलाक का होगा। अल्लाह ताला तमाम आमाल को शुमार करेंगे, जो भी कुछ ज़रा सी भी नेकी या खैर की थी, हर चीज़ लाई जाएगी, हर चीज़ जमा की जाएगी और सबका वज़न किया जाएगा, उन तमाम आमाल का हिसाब लिया जाएगा और जज़ा और सज़ा दी जाएगी। लिहाजा हमें बहुत कॉन्शियस रहकर ज़िंदगी गुजारनी है, किसी को हर्ट ना करें, किसी के ताल्लुक से बदगुमानी में मुब्तला ना हो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस्तेमाल करें। इसलिए तो आप देखें ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि इसलिए अल्लाह ताला ने दांतों के अंदर रखी है ज़बान को, इतनी ज़्यादा इन शार्प चीज़ों के अंदर रखी है, लेकिन फिर भी कितना बेधड़क और बेझिझक हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़ुबान का, और हमें एहसास भी नहीं होता, हमें शऊर भी नहीं होता। बाज़ वक़्त हम ऐसी बातें कर जाते हैं, तंज़िया बातें दूसरों को हर्ट कर देने वाली, ज़रा सा ही कह देखे, हाँ हाइट कम है, रंग कम है, इस तरह की बातें कह देना। अच्छा आपके पास ये नहीं है, ओ मेरे पास, मैंने तो पिछले साल ये ख़रीद ली थी, ये सर इस तरह की बातें, दूसरों को एहसास दिलाना, उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करना। और एक्चुअली ये जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो ख़ुद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, वो अपनी कमतरी को दूसरों के इससे पूरा करने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को तकलीफ़ में डालकर। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे मामलात एक बार नहीं पेश आए, बल्कि कई दफ़ा पेश आए, लेकिन हर बार आपने ख़ुद भी कभी बुरे अखलाक का मुजाहरा नहीं किया और अपने सहाबा को भी इसकी तरकीब नहीं दी, बल्कि दरगुजर करने की ही बात करते रहे। तो यहाँ पर उन तमाम आमल का हिसाब लिया जाएगा जो हम अपनी ज़ुबान से करते हैं या अपना हमारा रवैया होता है। छोटा सा नेक अमल जन्नत के आला मुकाम तक पहुँचा सकता है और छोटा सा बुरा काम सज़ा का मुस्तहिक बना सकता है। लिहाजा मुझे और आपको ऐसे ही अमल करने चाहिए जिनसे हम अजर सवाब के मुस्तहिक बन सकें, जिसकी वजह से हमको अजर सवाब मिले, क्योंकि यहाँ बुराई करने वाले को उस वक्त अफसोस होगा और वो कहेगा कि काश ये बुराई उसने ना की होती। क्योंकि आयत के अगले हिस्से में क्या है कि जिसने कोई बुराई की होगी तो वो आरजू करेगा कि काश के हो दरमियान उसके और उस बुराई के दूर का फासला, दूर का मामला। तो यहाँ पर दरअसल इंसान को अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का एहसास दिलाया गया है, अल्लाह ताला का जो इल्म है, उसकी वसत है, उसके बारे में फरमाया गया कि तुम ऐसे अमल करो जो तुम्हें अल्लाह ताला के पास आला मुकाम दे सके। हर चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत कामिला में शामिल है। इसमें इशारा है कि तुम अपने दिलों को भी पाक कर लो, हर वक्त इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के हालात और ख़यालात को भी जानता है। और आपको सोचना कि सहाबा इकराम कहा करते थे रसूल अकरम के पास कि या रसूलल्लाह, कभी कभी हमारे दिलों में ऐसे ख़यालात, ऐसे वसवसे आते हैं कि हमारा दिल चाहता है कि हम शर्म से या जैसे हम जलकर कोयला या राख बन जाएं, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी खबर ना हो या किसी को उसकी खबर ना हो। तो आप देखिए, इन सहाबा इकराम को भी इस बात की फ़िक्र थी, उनको शिर्क के ताल्लुक से ऐसे ख्यालात आते थे। तो लिहाजा इंसान को अपने ख्यालात पर भी कंट्रोल करना चाहिए, अपनी सोच पर भी वो कंट्रोल करे, ऐसे कामों में मशगूल रहे जिससे उसको अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो, जैसे कुरान मजीद की किसी आयत के बारे में गौर व फ़िक्र, किसी हदीस पर गौर व फ़िक्र, या ऐसे इल्म को समझने की कोशिश जिससे उसको फ़ायदा हो सकता हो, या अल्लाह ताला के किसी मखलूक के बारे में, या अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में सोचना, या अल्लाह ताला के बंदों के साथ भलाई किस तरह की जाए इसके बारे में सोच और तहकीक करते रहना। तो जब अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पर अपनी कुदरत कामिला का, अपने इल्म का जिक्र किया है, तो इसमें यह बात भी शामिल है कि वह जज़ा और सज़ा देने पर भी कादिर है जो क़यामत के दिन कायम होगी, और उस दिन उस शख्स को हर अमल का पूरा बदला मिल जाएगा, और जिसने बुरे काम किए थे उसको सज़ा मिल जाएगी। क्योंकि जिस दिन हर शख्स अपनी की हुई नेकियों को मौजूद पाएगा, तो यहाँ पर नेकियों का जिक्र है, आप देखें, यानी उसकी नेकियाँ मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी। तो हम जो भी दुनिया में नेकी करते हैं, यकीन जानिए वो अल्लाह ताला के पास महफूज होती चली जा रही है, और उसमें ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं की जाएगी। हर नेकी का अजर हमको बराबर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है? जब अल्लाह ताला हमें जानता है, हमारे दिलों के ख्यालात को भी जानता है, तो हम क्यों ना अच्छे अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, अच्छे ख्यालात को अपने दिल में जगह दें। तो यहाँ पर कहा गया कि छोटा सा नेक अमल वो भी ज़ाय नहीं जाएगा, और चाहे छोटा सा बुरा अमल हो वो भी ज़ाय नहीं जाएगा, उसको हाज़िर किया जाएगा। और इसलिए कहा गया कि उस वक्त वो ख्वाहिश करेगा कि काश मेरे और मेरी इस बुराई के दरमियान मशरिक़ और मगरिब की दूरी होती, यानी वो बहुत ज़्यादा अफसोस, हसरत और यास का शिकार होगा और शदीद तरीन गम में मुब्तला होगा, और ये आरज़ू करेगा कि काश ये गुनाह मेरे सामने लाया ही ना जाता। तो बंदे को ज़रूर उन गुनाहों से बचना चाहिए जिसके नतीजे में उसे अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अजाब मिलेगा, या उसको सख्त गम और तकलीफ़ और बर्दाश्त के साथ गुजरना पड़ेगा। तो गुनाहों को छोड़ना आज बहुत आसान है, उसकी वजह से बहुत बड़ी निजात मिल सकती है, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है वो थोड़े दिन की ज़िंदगी है, लेकिन कल जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है वो ज़्यादा तकलीफ दे होगी, अगर अल्लाह ना करे कोई बुरा अमल करता है और उसका बदला उसको मिलता है। तो उस वक्त इंसान अफसोस करेगा कि काश मेरे और मेरे इस गुनाह के दरमियान, मेरे और मेरी इस बुराई के दरमियान दूर की दूरी होती, बहुत ज़्यादा दूर की दूरी। और कुरान में ये मज़मून कई जगह बयान हुआ है, सूरह मुज़म्मिल में जैसे आता है कि या हसरत अलामा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, हाय अफसोस मैंने अल्लाह की जनाब में कोताही की। एक और जगह आता है कि सूरह निसा की आयत है, जिन्होंने कुफ्र किया और रसूल की नाफरमानी की, उस दिन तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन उनको निकल कर बराबर हो जाए। अब आप सोचें, सूरह निसा 42 आयत है, इससे क्या पता चलता है कि उस वक्त इंसान अफसोस, हसरत और यास का शिकार होगा कि यहाँ से फ़रार हो जाए, लेकिन नहीं जा सकेगा, उसको वहीं रुकना होगा। और जिन्होंने कुफ्र किया था और रसूल की नाफरमानी की थी, उस दिन तमन्ना करेंगे कि काश ज़मीन उनको निकल कर बराबर हो जाए। तो इससे क्या पता चला कि इंसान को अपने आमाल ही लेकर जाना है आखरत में, कोई और उसके साथ नहीं आएगा, और हमारे आमाल ही हमें जन्नत का मुस्तहिक बना सकते हैं और दोज़ख से बचा सकते हैं। तो क्या बात की गई है कि तरगीब दिलाई गई है, एक उम्मीद दिलाई गई है कि तुम अमल सालेह करोगे तो तुम्हें उसका बेइंतहा अजर मिलेगा, और तरहीब दिलाई गई है, और ये भी ज़रूरी है। आप देखिए, तरगीब और तरहीब दोनों ज़रूरी है, यानी अल्लाह ताला की रहमत का भी जिक्र हो, और अल्लाह ताला की जो सिफत है कि वो हर चीज़ पर काबू भी रखता है, वो हर चीज़ जिन्हें पूरी कुदरत कामिला का मालिक है वो सज़ा भी दे सकता है। तो इस बात को भी जहन नशीन किया जाए कि तरगीब और तरहीब दोनों साथ ज़रूरी है। तो तरगीब क्या है कि अमल सालेह करके अल्लाह ताला से उम्मीद, और तरहीब क्या है कि गुनाहों को तर्क कर देना इस डर से कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अपनी रहमत और अपनी शफ़क़त की बिना पर अल्लाह ताला अपने बंदों को डरा रहा है कि देखो है मेरे बंदों, तुम ऐसा ना होना कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगो। और ये कब होता है? इंसान बुराई की तरफ क्यों जाता है? जब उम्मीदें उसकी तवील हो जाती हैं, जब बेफिक्र हो जाता है इंसान, या फिर वो दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस आयत में जो बात हमको सीखने को मिलती है कि दिन के किसी भी हिस्से में हम अमल खैर ज़रूर करें, कोई ना कोई एक अमल ऐसा ज़रूर हो जिस पर हम टिक कर दें कि हाँ हमने ये अच्छा काम किया था। और उसमें ये भी हो सकता है कि किसी मोहताज की मदद कर दें, किसी को खाना बना कर दे दें, किसी के लिए भाग दौड़ कर लें, अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है कोई पेपर्स वगैरह बनाने के लिए, या किसी को खाना खिला दें, या किसी को खैर की बात पहुंचा दें। यानी अच्छी किताबें भी दी जा सकती हैं। तो कोई ना कोई खैर का काम किया जाए और बुरे कामों से बचा जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया कि जो कुछ बुरे काम उसने किए होंगे उसको भी वह हाजिर पाएगा। जैसे कि आता है वमा अमिलत मिन सुइन तवद्दु लौ अन्न बैनह व बैनहु अमदम बईदा, कि और जो अमल किया उसने बुराई से वो भी सामने पाएगा। तो उस वक्त वो आरजू करेगा कि काश के हो दरमियान उसके और दरमियान उस बुराई के दूर का फासला। अब देखिए बुराई क्या है असल में। बुराई की बहुत सारी डेफिनेशन भी मिलती है हमको। हर वो काम बुरा है जो शरीयत की नज़र में बुरा हो, हर वो काम बुरा है जिसको रसूलुल्लाह ने मना फरमाया हो, जिसको अल्लाह ताला की तरफ से, जिसके बारे में अल्लाह ताला की तरफ से वईद आई हो। तो इंसान को चाहिए कि हर वक्त वो इस बात का ध्यान रखे कि अपने दिल और दिमाग को बुरे ख्याल से भी पाक रखे और ऐसी सोच से भी दूर रखे जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी हो, और ऐसे काम करे जिससे अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल हो। तो यहाँ इस बात का इल्म भी होता है कि हर शख्स की नेकियाँ मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी और कल क़यामत के दिन वो उसको हाजिर पाएगा, यानी सब नेकियाँ उसकी जमा कर दी जाएगी और उस वक्त उस इंसान को उसकी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होगी। और फ़मन यअमल मिसक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिसक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो भी खैर उसने किया होगा वो मौजूद पाएगा, यानी उसके सामने ही आ जाएगा वो सारी चीज़ें। खैर किया होगा तो खैर भी उसके सामने आ जाएगा, शर किया होगा तो शर भी उसके सामने आ जाएगा। तो कोई छोटी सी नेकी भी ज़ाय नहीं जाएगी। और ये जो ज़र्रा का लफ्ज़ आता है, एक्चुअली ये बहुत ही छोटे से टाइनी पार्ट के लिए आता है ज़र्रा। तो ज़र्रा बराबर नेकी भी ज़ाय नहीं जाएगी। आप सोच लें कि सुभानअल्लाह कैसे अल्लाह ताला के पास अजर देने के लिए क्या कुछ है। तो खैर एक जामे लफ्ज़ है जिसमें अल्लाह ताला के करीब करने वाला हर नेक अमल शामिल है, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा। और सू एक जामे लफ्ज़ है जिसमें अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाला हर अमल शामिल है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अब मुझे और आपको क्या करना है कि हम इस बुराई से यानी सू से बचें और भलाई यानी जो नेकी के काम हैं उसकी खुद भी उसको करने की कोशिश करें और दूसरों को भी उसकी तरगीब दें। क्योंकि खैर जब अतालु इलल खैरी कफ़ाइली, कि किसी खैर की तरफ बुलाना ये भी खैर करने वाले के बराबर ही है, नेकी करने वाले के बराबर ही है। और हमको तो कुंतुम खैरा उम्मतिन कहा गया है, यानी जो खैर का लफ्ज़ इतना जामे है जो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने कुरान में इस्तेमाल किया है। और वमयूतल हिकमत फ़कत ओतिया खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत दी गई उसको खैर कसीर मिल गई, सुभानअल्लाह। तो यहाँ पर भी खैर का लफ्ज़ आया है और माल के लिए भी खैर का लफ्ज़ आता है। तो ये खैर बहुत ही जामे लफ्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले हों, सुभानअल्लाह। आप सोचें कि अच्छा अखलाक इंसान के ईमान को कामिल कर देता है, अच्छा अखलाक इंसान को लोगों का हर दिल अजीज़ बना देता है, लोग उसकी बात मानते चले जाते हैं। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है असल में कि लोगों का आपकी बात मानते चले जाना। और मीज़ान में हुस्न अखलाक ही सबसे ज़्यादा भारी होंगे, कोई और चीज़ नहीं होगी। जब रखा जाएगा हुस्न अखलाक को, सबसे ज़्यादा वज़न हुस्न अखलाक का होगा। तो अब हम देख लें कि मुझे और आपको हमें क्या बेहतर करने की ज़रूरत है, अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना रवैया, अपने मामलात। फिर ये भी हम देखते हैं कि अच्छाई में क्या चीज़ आती है। अच्छाई में नरमी आती है, अच्छाई में खुशमिजाजी आती है, मुस्कुराना आता है। कहा जाता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मुस्कुराते थे। और आपने फरमाया कि कोई शख्स तुमसे कोई चीज़ मांगे और अगर तुम ना दे सको तो खैर की नहीं भलाई की कोई बात ही कर दो उसे, या अपनी ज़ुबान से कम अज़ कम उसको तकलीफ़ ना दो। तो नरमी किसी भी चीज़ को खूबसूरत बना देती है या उसमें खूबसूरती पैदा कर देती है। और एक हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी ख़ानदान के लिए भलाई चाहता है तो उसमें नरमी डाल देता है, सुभानअल्लाह। यानी ख़ानदान की भलाई की बात की जा रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से होती है भलाई, तो उसमें नरमी आ जाती है। आज आप देखें कि कितनी सख्त दिली है, जहाँ देखो वहाँ परेशानी है। जैसे कि सवालत आते रहते हैं हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड भी, کہ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، لیکن سامنے والا کہتے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور مسلسل بیوی کو یا بیوی پر طنز کرتے رہنا، یا اگر بیوی کا شوہر سے کچھ پرابلم ہے تو بیوی کا شوہر پر طنز کرتے رہنا ہمیشہ، بھلا یہ چیز کیا محبت پیدا کریں گے؟ آپ خود بتائیے، ملنے جلنے والے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے نرمی سے پیش نہیں آئیں گے تو سب ہم سے دور ہو جائیں گے، ہم دین کی بات اور خیر کی بات کیسے پہنچا سکیں گے پھر ان کے اوپر، ان تک؟ تو اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس میں نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کی درجات بلند فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ سوچیں کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو دردہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ اللہ رحم فرمائے، کتنی بڑی بات ہے کہ نرمی سے محروم رہنا ہر خیر سے محروم ہو جانا ہے، کیونکہ یہاں پر جو لفظ آیا کیا ہے، خیر کا لفظ آیا ہے نا، کہ جو بھی تم نے خیر کیا ہوگا وہ تم حاضر پاؤ گے، تم کو وہی کچھ دیا جائے گا جو تم نے کیا تھا، جو تم نے بھیجا تھا۔ اگر تم نے خیر کی تھی تو خیر کو پاؤ گے، کہ ما عملت من خیر محضرا، جو بھی تم نے خیر کیا ہوگا تم اس کو حاضر پاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی خیر کی بات کی گئی ہے کہ من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اس لیے آپ دیکھیں رسول اکرم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، اور آپ کا اثر آپ کے صحابہ پر بھی پڑا تھا، کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، کیسے ان کے اخلاق تھے، کیسے ان کے اندر نرمی تھی، کتنا وہ واقعہ ہمیں رلا دیتا ہے جب کہا جاتا ہے کسی بات پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ تیز بات چیت ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کچھ سخت سست سنا دیا، کچھ غلط بات سنا دی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور میں اب رسول اللہ کے پاس آپ کا معاملہ لے کر جاتا ہوں۔ تو ابو بکر ان کے پیچھے پیچھے دوڑے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، رسول اللہ کے سامنے ہی بات نہ کہنا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نہیں مانے اور تیز تیز چلنے لگے۔ جب آگے پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ میں نے تو غلط کیا اور میں نے رسول اللہ کو نہیں بتانا چاہیے، تو وہ اپنے گھر چلے گئے۔ جب دیکھا رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو دیکھا کہ ابو بکر دوڑے دوڑے آ رہے ہیں اور تھوڑے سے پریشان ہیں یا غصے میں ہیں، یا پھر بار بار ان کے تیز چلنے کی وجہ سے ان کا تہبند نیچے لٹک رہا تھا۔ تو رسول اکرم نے دیکھ کر فرمایا کہ دیکھو تمہارے صحابہ آ رہے ہیں اور ان کا تہبند نیچے لٹک رہا ہے۔ ابو بکر آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ، عمر، یعنی آپ عمر سے کہیے دیکھیں وہ مجھے معاف نہیں کر رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگنے لگا کہ آپ غصے میں ہیں۔ تو رسول اکرم کے چہرے کا رنگ دیکھ کر ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، عمر کی غلطی نہیں تھی، میری غلطی تھی، عمر سے کچھ نہ کہیے گا۔ سبحان اللہ، کیسی آپس کی محبت تھی ان لوگوں کی، کیسے ایک دوسرے کے دلوں میں وہ خیر رکھتے تھے ایک دوسرے کے لیے، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اگر آپس میں کچھ اختلاف ہو بھی جاتا تھا، اختلاف رائے، کوئی بات چیت ہو بھی جاتی تھی، تو کیسے درگزر کرتے تھے۔ اور کہا جاتا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا بھی جب دل نہ لگا تو وہ بھی دوڑے دوڑے آئے، وہ بھی رسول اللہ کی مجلس میں آئے، اور وہ بھی ڈرنے لگی کہ رسول اللہ کہیں ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ اور انہوں نے بات کہہ سنائی کہ یا رسول اللہ، میں نے پہلے کہہ تو دیا تھا کہ میں رسول اللہ سے شکایت کروں گا، لیکن بعد میں مجھے خود احساس ہوا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اور اسی لیے میں سیدھا گھر چلا گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں دونوں کیسے خیر خواہی رکھتے تھے ایک دوسرے کی۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نکلے تھے شکایت کرنے کی غرض سے، لیکن واپس گھر چلے گئے اور نہیں کی شکایت۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب عمر رضی اللہ عنہ ان کو معاف نہیں کر رہے تھے، تو وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، اور جب دیکھا کہ رسول اللہ عمر کی شکایت کرنے پر غصے میں آ رہے ہیں، تو آپ نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، عمر کا قصور نہیں تھا، میرا قصور تھا۔ کیسی محبت تھی آپس میں، کیسی ایک دوسرے کے لیے دریا دلی تھی، کیسے جذبات تھے، ماشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے اچھا اخلاق، یہ ہوتی ہے عاجزی، یہ ہوتی ہے اچھی صفات، کہ اپنے ساتھی کے لیے ایسی خیر خواہی رکھنا، ایسی بھلائی چاہنا کہ ایون اس کی شکایت کرنا بھی ہمیں اچھا نہ لگے۔ और आप देखिए रोज़मर्रा के मामलों में ऐसा हो जाता है, बाज़ औक़ात बच्चों से अनबन हो जाती है, बाज़ औक़ात हस्बैंड वाइफ का मसला हो जाता है, और हस्बैंड वाइफ का तो बहुत दफ़ा होते रहता है। ये छोटी मोटी खटपट ना हो तो आप देखिए ज़िंदगी तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि दो लोग साथ में रह रहे हैं, मुख्तलिफ मिजाज के हैं, मुख्तलिफ ख्यालात के मालिक हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, लेकिन फ़ौरन दरगुजर से काम लें, माफ़ी मांग लें, कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता। कभी अपने बहन भाइयों को हम सख्त कलामी से जवाब दे देते हैं, कभी सख्ती से कोई जुमला कह दिया, कभी किसी को हर्ट कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया, बाज़ औक़ात सास बहू में हो जाता है, बाज़ औक़ात दो बहनों बहनों में हो जाता है, बाज़ औक़ात आपस में दो दोस्तों में हो जाता है, बहुत ही अच्छे दोस्त हों काम करने वाले साथ मिलकर, नेकी का काम ही साथ में कर रहे हों, लेकिन बाज़ औक़ात हो जाती है सख्त कलामी, इंसान है ना हम, तो लेकिन फ़ौरन अपनी बात पर, अपनी बात के लिए रुजू करें, फ़ौरन माफ़ी मांगें, जिसका दिल दुखाया उससे भी माफ़ी मांगे, जिसको हर्ट किया उससे भी माफ़ी मांगे, और अल्लाह ताला से भी माफ़ी तलब करें, अपने अखलाक को अच्छा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप देखिए जो चीज़ नरमी में होती है ना वो सख्ती में नहीं है। इतनी खूबसूरत हदीस मैं आपके सामने रखूँगी जो बहुत पसंद है मुझे, कि अल्लाह ताला को कैसे लोग पसंद हैं और अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है, या वो कौन लोग हैं जो जिनसे लोग भी मोहब्बत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि अल्लाह उखबिरकुम बिमन यहरमु अलन्नार व बिमन तहरमु अलहिन्नार अला कुल्ली करीबिन हय्यिन सहलिन। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ख़बर ना दूँ ऐसे शख्स की जो जहन्नम की आग पर हराम है या जहन्नम की आग उन पर हराम है। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह बिल्कुल, आपने फरमाया कि ये हर उस शख्स पर हराम है जो लोगों के करीब रहने वाला, नरमी करने वाला, आसानी करने वाला है। सुभान अल्लाह, यानी कौन लोगों से करीब होता है जिसका अखलाक अच्छा होगा, लोग उससे करीब किस वक्त रहेंगे, वरना तो लोग दूर भागेंगे ना, लोग तो डेढ़ मीटर का फासला रखते हैं जब आपका अखलाक अच्छा ना हो, कोई आपसे करीब ही नहीं आएगा मिलने के लिए, कोई सलाम भी नहीं करेगा, कलाम भी नहीं करेगा जब आपका अखलाक अच्छा नहीं होगा, जब आप बद अखलाक की के मालिक होंगे। तो ऐसा शख्स जहन्नम की आग पर हराम है और जहन्नम की आग उस पर हराम है। कौन है वो? जो बहुत लोगों से करीब रहने वाला, नरमी करने वाला और आसानी करने वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये सिफात पैदा करे, ये क्वालिटीज़ पैदा करे कि हम लोगों के करीब हों, हम आसानी पैदा करने वाले हों लोगों के लिए, हम नरमी करने वाले हों। और ये भी हमें हदीस से पता चलता है कि खैर, यानी जो नेकी है वो खैर ही खैर लाती है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो चीज़ नरमी पर अता करता है वो सख्ती पर अता नहीं करता, और जो कोई नरमी से महरूम रहा वो हर खैर और भलाई से महरूम हो गया। और एक हदीस में आता है कि जिस चीज़ में नरमी होती है वह उसे जीनत, यानी खूबसूरत बना देती है, जीनत वाला बना देती है, और जिससे निकाल दी जाती है उसे ऐबदार कर देती है। तो यहाँ पर इसलिए जो कहा गया ना कि जो कोई सू लेकर आएगा, यानी बुरे अमल लेकर आएगा, वो भी उसको हाजिर पाएगा, और उस वक्त फिर वो अफसोस करेगा कि काश ये मेरी बुराई के दरमियान और मेरे दरमियान दूरी होती, बहुत दूर की दूरी, यानी उस वक्त उसको इतना अफसोस, इतना हसरत और यास का शिकार होगा इंसान कल क़यामत के दिन अपनी बुराई को देखकर, कि वो ख्वाहिश करेगा कि काश मैं इस बुराई से दूर होता, वो इतना शर्मिंदा होगा, इतना पशेमान होगा और कहेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने ये बुराई की, और उस वक्त इंसान अफसोस करेगा, वो बेइंतहा अफसोस और शदीद तरीन गम की वजह से ये आरज़ू करेगा कि ये जो बुराई है मुझसे दूर कर दी जाए। तो बंदे को आज दुनिया में उन गुनाहों से डरना चाहिए, बचना चाहिए, जिसके नतीजे में कल आखिरत में उसको शदीद अफसोस का शिकार होना पड़ेगा, या वो गम करेगा या आरज़ू करेगा कि ये दूर चली जाए बुराई मुझसे। उनको, उस बंदे को उन गुनाहों को छोड़ देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए, वरना उस वक्त वो कहेगा या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, कि हाय अफसोस, मैंने अल्लाह की जनाब में कोताही की, या वो कहेगा कि उस दिन जालिम अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा कि काश मैंने रसूल की राह अख्तियार की होती, हाय अफसोस, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। और एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरह ज़ुख़रुफ़ में कि यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक़ और मग़रिब की दूरी होती, तू तो बड़ा बुरा साथी है। तो इससे पता चलता है कि ख्वाहिशात नफ्स के पीछे भागना, लज्जतों को हासिल करते रहना, ये जो है दुनिया में ही रह जाने वाला है सब कुछ। तो इस जहान में, इस दुनिया में इन चीज़ों को छोड़ना, तर्क करना नफ्स को मुश्किल लगता है, दुश्वार लगता है, लेकिन ये उन अजाबों को झेलने से बहुत बेहतर है, उन रसवाइयों को बर्दाश्त करने से बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि कल आखिरत की जो रसवाई है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, सारी खलकत के सामने हम होंगे और सर आम रसवा किया जाएगा कि ये किए थे तुमने आमाल। अल्लाह ताला हमको, अल्लाह ताला हमारी बुराइयों पर पर्दा डाले रखे, जैसे दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारी बुराइयों पर पर्दा डाला, अल्लाह ताला आखिरत में भी डाले रखे। तो आज दुनिया में इन लज्जात को छोड़ना बहुत आसान है, कल इन सज़ाओं को झेलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बंदे बहुत ही जालिम और नादान हैं असल में, वो अभी हाजिर पर नज़र रखते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको अक़ल से नवाजा है और यहाँ पर अल्लाह ताला ने क़ुरान में उनके आमाल के अंजाम भी बता दिए हैं। तो फिर वो अमल करने चाहिए जिससे फ़ायदा हो, ना कि वो अमल जिससे नुकसान हो। हर उस काम से हमको बचना चाहिए जिसमें हमारे दोनों जहाँ का नुकसान है, क्योंकि हमारा बुरा अखलाक, हमारी बुराइयाँ दुनिया में लोगों से हमें दूर कर देगी और हम अल्लाह ताला की शफ़क़त और रहमत से महरूम हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला का ये हम पर एहसान है, ये अल्लाह ताला की शफ़क़त है असल में, उसकी रहमत है कि वो अपनी ज़ात से हमें डरा रहा है ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दिल सख्त ना हो जाएं। और इसीलिए क़ुरान में तरगीब भी है, तरहीब भी है, यानी किसी चीज़ के लिए जोश भी दिलाया गया है, रग़बत भी दिलाई गई है ईमान और अमल सालेह के लिए, और तरहीब डरावा भी है कि जिससे हमको खौफ हासिल हो ताकि हम गुनाह छोड़ दें। तो इसीलिए फरमाया कि वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा वल्लाहु रऊफ़ुम बिलइबाद, कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी ज़ात से डरा रहा है और अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। तो ये हमको दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा एहसान वाला मामला करने की तौफीक दे, कि हम लोगों से दरगुजर करने वाले बने बल्कि उल्टा एहसान करने वाले बने, कि उनकी बुराई का जवाब भी भलाई से देने वाले बने, ताकि कल क़यामत के दिन हमारे आमाल नामे में हमारा पल्ला, हमारा वज़न भारी हो नेकियों का। तो इससे, इन आयत से हमें पता चला कि अल्लाह सुब्हान तआला की मोहब्बत का तकाजा है, उसकी अपने बंदों पर रहमत और शफ़क़त है, जिसकी बिना पर वो अपने बंदों को बता रहे कि क्या काम अच्छे हैं, क्या काम बुरे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी उम्मीदें तवील हो जाएं और हम बेफिक्र होकर बैठ जाएं और जो दिल चाह करने लगें, कि अल्लाह ताला तो गफुर रहीम है, माफ़ करने वाले, जो चाहो करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अच्छे अखलाक को अपनाना चाहिए। हर्ट होता है इंसान, तकलीफ़ होती है और ज़ुबान से कोई बुरी बात निकल भी जाती है एक दूसरे के लिए, क्योंकि जब हम रहते हैं जॉइंट फैमिली हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या भाई बहन हो साथ में, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमको दरगुजर से काम लेते रहना चाहिए। हमको अपने अंदर नरमी पैदा करनी चाहिए और अपने अखलाक को मुकम्मल करने की, अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस आयत को पढ़कर मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि दिन के कोई भी हिस्से में अपने नेक आमाल को कर गुजरिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल अंजाम दीजिए, सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिले, और किसी मोहताज के लिए, उसकी हाजत को दूर करने के लिए, उसकी हाजत को पूरा करने के लिए कुछ कोशिश और जद्दोजहद की जाए। किसी को खाना खिलाना, किसी को खैर की बात पहुंचा देना, कोई भी नेकी का काम, क्योंकि खैर है यहाँ पर ना, कि जो कुछ भी खैर तुम करोगे उसको हाजिर पाओगे। तो हमको अहादीस से पता चलता है कि खैर के बहुत सारे काम हैं। किसी को नेकी की तरफ दावत देना, ये भी खैर है। किसी को बुराई से रोकना, ये भी खैर है। किसी की बुराई हो रही हो तो लोगों को बुराई करने से रोक देना, ये भी खैर है असल में। अपने भाई के पीछे उसकी मदद करना, फिर किसी की तकलीफ़ देखकर उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करना, किसी की सिफारिश करवा देना, किसी को खाना खिला देना, किसी की तकलीफ़ दूर कर देने की कोशिश करना, कोई मोहताज है तो उसकी उस कमी को पूरा करना। गर्ज हर नेक काम खैर में आ जाएगा। तो आज देखें कि अभी चूँकि रमदान आने वाला है, हम सब जानते हैं, और रमदान में इंसान के अंदर नेकी का जज्बा ज़्यादा गालिब आ जाता है, तो क्यों ना हम अभी से अपने आप के लिए या अपने अंदर वो कोशिश करें पैदा करने की, कि हम खैर के काम ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने, दूसरों के काम आने वाले बने। अपने लिए तो हर कोई जीता है, इस्लाम हमें दूसरों के लिए जीने की तरगीब देता है कि दूसरों के लिए काम करो, दूसरों के लिए खैर चाहो, दूसरों को नेकी की राह की तरगीब दो, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे करूबियाँ। इबादत तो हो ही रही थी, अल्लाह ताला की फरिश्ते मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको इंसानों को एक दूसरे के दुख दर्द के लिए भी पैदा किया है, एक दूसरे के काम आने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे से दरगुजर करने के लिए, एक दूसरे की खैरख्वाही चाहने के लिए, जैसे सहाबा करते थे। सहाबा किस कदर एक दूसरे के खैरख्वाह थे, कैसे एक दूसरे के ताल्लुक से उनके दिल में मोहब्बत थी, कैसे वो हर नेकी का काम जो अपने लिए पसंद करते थे अपने दोस्त के लिए, अपने साथियों के लिए भी पसंद करते थे। तो हम भी ये खैर के काम करें, हम भी एक दूसरे को खैर की बात बताएं और दरगुजर करने की आदत डालें, अपने अखलाक को अच्छा बनाएं। आप देखें अच्छा लहजा और अच्छे से की गई बात आपको लोगों के दिलों के लिए हर दिल अजीज़ बना देगी, और आपके बुरे लहजे में की गई बात आपको लोगों से दूर कर देगी। अभी हमने पढ़ा ना कि जहन्नुम की आग उस पर हराम है और वो जहन्नुम की आग पर हराम है, कौन? जो लोगों से करीब हो, जो नरमी वाला हो, जो आसानी पैदा करने वाला हो। सहलिन हयिनिन लयिनिन, सुभान अल्लाह कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। हम जहन्नुम की आग से बचना चाहते हैं हम सब, मैं और आप, तो फिर हमको अपने आप को लोगों से करीब करना पड़ेगा, ना कि लोग हमसे दूर भागने वाले बने, यानी किसी की बदअखलाकी की वजह से लोगों से मिलना छोड़ दें, इससे बढ़कर बदकस्मती क्या हो सकती है कि बदतरीन है वो शख्स। हदीस का मफहूम है कि जिसके बदअखलाकी की वजह से लोगों से मिलना जुलना या बात करना छोड़ दें, तो कहीं हम गौर करें कि मैं ऐसी तो नहीं हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं कि मेरी बदअखलाकी की वजह से लोगों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया है। तो अपने आप को संवारने की कोशिश करें, जितना हमारा खुलूक अच्छा होता जाएगा उतनी खूबसूरत हम बनते चले जाएँगे इंशाल्लाह। तो अपने अखलाक को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें और हमारा आज का दिन कल से बेहतर हो, यानी आज हम जैसे हैं कल हम उससे भी बेहतर बनने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा अच्छा नेकियां अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि हमारा अखलाक अच्छा हो, और हमको दुआ भी करते रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा अखलाक अच्छा बना दे, कि सूरत तो अल्लाह ताला ने अच्छी बनाई है, अल्लाह ताला हमारा अखलाक भी अच्छा बना दे। आमीन। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم